قد علم كل اناس مشربهم. اگلے حصے پہ غور کیجئے گا. قد تحقیق علم جان لیا کل ہر اناس انس نے. اناس کیا ہے یہاں؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یا ایھا الناس, یاد ہے آپ کو؟ وہاں کیا تھا؟ الناس. ال نکال دے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ناس. یہاں کیا ہے؟ اناس. اناس جمع ہے انس کی اور اسی سے لفظ انسان ہے. بس کہتے کہ اناس جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہی بس ایک جمع ہے اور اس کا کوئی واحد نہیں, لیکن باہر لفظ وہی ہے جو انس, نسیہ, بھولنے والا. یہاں مراد ہے گروہ, لوگوں کا ایک بڑا گروہ. مشربہم, یہ جو مشرب لفظ ہے اس کو بھی لکھیے ذرا اپنے پاس نوٹس میں. مشرب, مفعل. مفعل کا وزن بند رہا. مستر میمی ہے یہ. مستر کہتے ہیں وہ چیز جس میں سے کچھ نکلے. یہ صدر سینہ ہوتا ہے نا, سینے میں سے چیزیں آتی ہیں, تو مصدر سورس کو کہتے ہیں عربی میں. یہ ہے کیا اصل میں؟ اس وقت اسم ظرف ہے. آپ نے اردو کی کتاب میں ظروف کا لفظ پڑھا تھا, زوئے سے ظروف. ظروف کس کو کہتے ہیں؟ برتن کو جس میں پانی ڈالے تھے. اچھا, اردو میں ایک جملہ ہم کتنا بولتے ہیں, اس کا ظرف ہی چھوٹا ہے. کس کو کہتے ہیں بھلا؟ کم ظرف. چھوٹی سی بات سن کے چڑھتا ہے, تو ظرف کہتے ہیں برتن کو, کنٹینر. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ظرف, ایک مکان اور ایک زمان. اسم ظرف زمان اور مکان. مثلا آپ دیکھیے کہ یہاں آپ کے پاس لفظ ہے مشرب, روٹ کیا ہوگا سب ذرا کوشش کریں؟ شین رابا, کیونکہ شرابا, شراب, شربت, ٹھیک ہے, وہی لفظ ہے یہ. تو پھر یہ مشرب کیوں آ گیا؟ تو دیکھیے عربی زبان کے دو وزن یاد رکھیے, مفعل, مفعل. مفعل کے وزن پہ یہ مشرب ہے, مسکن. اور مشرب بولوں گی تو 10 وزن تو آپ ہی بتا دیں گے مجھے. مسجد, منزل, مغرب, مشرق. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ ہے نا. تو اسم ظرف زمان یا مکان یا تو جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے. یہاں مراد ہے مشرب, پانی پینے کی جگہ. اردو میں ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ گھاٹ. گھاٹ, جہاں لوگ پانی پیتے ہیں. بہرحال یہ مراد ہے کہ وہ چشمے کا سائز ہی ایسا تھا کہ ہر ایک کو پتا چل گیا کہ میرے لیے کون سی سائڈ ہوگی. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے, تو 12 ہی چشمے پھوٹے. یہاں سے آرگنائزیشن بھی سمجھ آتی ہے, جتنے مہمانوں کو بلایا ہو اتنا اہتمام کریں. لوگوں کو بلانا اور اہتمام کم کرنا یا زیادہ کا اہتمام کر کے لوگوں کو نہ بتانا, یہ دونوں ہی فساد بنتا ہے بعض دفعہ دعوتوں کے موقع پہ. تو کیا پتہ چلا کہ ہر ایک نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو ڈھونڈ لیا. پھر کیا کہا؟ کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. پیچھے کیا تھا؟ من اور سلوا, تو کلو تھا. اب پانی بھی آ گیا تو وشربو, پیو. میں رزق اللہ, اللہ کے رزق سے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا رزق کس کو کہا گیا؟ نمبر ایک من و سلوا جو پیچھے گزر گیا, اور دوسرا دیکھیے یہ پانی. پانی بھی اللہ کا رزق ہے اور بہت بڑا رزق ہے اللہ کا. میں اکثر پانی کی قدرت پہ غور کرتی ہوں تو میرا عقل دنگ رہ جاتی ہے. آپ دیکھیں صرف گھر میں پانی بند ہو جائے, گندگی ہوگی, صفائی نہیں ہو سکے گی, کھانا پکے گا نہیں پکے گا. آپ 10 چیزیں پکا کے بیٹھ جائیں, پینے کو پانی نہیں ہے تو حلق سے اتریں گی. اور میں اکثر پانی کے گلاس کو دیکھ کے کہتی ہوں نہ رنگ ٹرانسپیرنٹ ہے, کوئی ریڈ, پیلا, نیلا بھی نہیں. وہ روز پی بھی نہیں سکتے آپ. یہ الگ بات ہے آج لوگ کالا پانی وائٹ پانی سے زیادہ شوق سے پیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ سادہ پانی چیز میں ڈالیں پانی گلا دیتا ہے. خود کتنا بے ضرر ہے, گلاس میں پورا مہینہ پانی پڑا رہے گلاس نہیں گلے گا. وہی پانی گوشت میں ڈال کے چولہے پہ ڈال دیں, گوشت گل جائے گا. ہنڈیا ہی نہیں پک سکتی اگر گوشت میں پانی نہیں ڈالیں گے یا اس طرح کی چیزیں. تو یہ پانی اللہ کا ایک رزق ہے. اور کہا کھاؤ پیو ولا تاسو فی الارضی. تاسو کا لفظ بہت نیا ہے آپ کے لیے, پہلے نہیں گزرا. اس کے دو روٹ ہوتے ہیں, عین سا یا اور عین سا و. پیچھے ہم نے لفظ پڑھا تھا فساد, وہ کون سا فساد تھا یاد ہے آپ کو؟ دو لفظ لکھائے تھے, حسی اور مانوی. ایک وہ جو محسوس ہو, بچوں نے گن ڈال دیا, چیزیں بکھیر دی, تو یہ کون سا فساد ہے؟ جو نظروں سے دکھ رہا ہے. لیکن ایک وہ فساد ہوتا ہے جو دماغوں میں ہے, سوچ پلیوٹ کر دی, اللہ کے بارے میں شک ڈال دیا, ہوموسیکشوالٹی کو ایک سب سے بڑا فتنہ بنا دیا. ہاں, تو تاسو جو ہے نا لفظ, اصل میں بہت زیادہ فساد کرنا, فساد میں تیزی دکھانا. चले आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, पाकिस्तान में होता था, कभी आपने सर्दियों के कपड़े समेटे हो, वूलन स्वेटर जो प्योर वूल होते हैं, लैम वूल के, अब आप रखते हैं तो बड़े आराम से रखते हैं, अगले साल निकाला तो क्या हुआ, कीड़ा आ गया। वो कीड़ा कहाँ से आता है? वूल का कीड़ा, उसको असफ़ कहते हैं। असफ़ कहते हैं वो फसाद के फसाद फैलाने वाला नजर ही ना आए। जैसे आप अखबारों में खबरें नहीं सुनते, नामालूम अफराद ने गोलियां बरसाई और ये हो गया और वो हो गया, तो फसादी या फसाद और असा में क्या फर्क है कि फसाद दिखता है, मुफसिद नजर आ रहे होते हैं आंखों के सामने, बट असब उससे भी ज्यादा, इसमें अमूमन जहनी फसाद होता है जिसके अंदर बहुत है। और यहां कौन सा फसाद था भाई? और आप नोट करें आगे जुमले में, फला तासो फिलर दी, यहां फिलर से करीब में जाएं तो क्या मानी समझ आ रहा है? वादिये थी सहराए सीना, यानी अपने इर्द गिर्द फसाद ना फैलाओ। मुफसिदीन का लफ्ज भी फिर आ गया, यानी उसकी जरा हल्की फॉर्म बता दी गई। क्या पता चला इस सारी बात से कि अल्लाह ने उनको खाना पीना दिया और कहा क्या फसाद ना करो। सवाल पैदा होता है कि वहां सहरा में खाना पानी या मन सलवा लेकर पानी पीकर वो क्या फसाद करने वाले थे, गोलियां तो नहीं चला रहे थे, तो ये कौन सा फसाद है? तो नोट कीजिए, सबसे बड़ा फसाद इस दुनिया में कब फैलता है? जब लोग नेमतें देने वाले को भूल जाते हैं नेमतें लेकर, नंबर एक, और नंबर दो, नेमतें पाकर नेमतें देने वाले की नाफरमानी करते हैं। दो बातें हुई, मैं दोहराती हूँ, फसाद कब फैलता है? जब नेमत देने वाले को भूल गए। अम्मी अबू आपने तो कभी कुछ दिया ही नहीं, आप मुझे तो देती कुछ नहीं, ये भी बड़ी बुरी बात है। और दूसरी ये कि अम्मी ने दिया और उसके बाद अम्मी ने कोई काम कहा तो उसी अम्मी की नाफरमानी कर दी, ये भी फसाद है। अल्लाह सुबहान तआला यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए बनी इसराइल पर जो एक और नेमत थी उसका तذکرہ करते हैं, और ये सहराए सीना का ये वाकया है। कहते हैं कि लोग मूसा और हारून के खिलाफ हो गए, झगड़ने लगे, मूसा हम तो जंग वहीं मिस्र में ही अच्छे थे, तूने हमें कहाँ सहरा में ला के मार दिया। देखिए नाशुक्री कौमें ऐसी होती हैं, चलो गुलाम थे कोई बात नहीं, रोटी पानी तो अच्छी मिलती थी, तुमने मारना था हमें और हमारे जानवरों को, तो यहाँ के लिए या तो पानी भी नहीं, या तो अनार भी नहीं, या तो जीरे भी नहीं, ये नहीं वो नहीं। कहते हैं कि आकर वो बैठे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतना रंज हुआ उनकी इस बात पे कि वो सजदे में गिर गए, कहा अल्लाह ताला मैं इस कौम से कैसे बात करूं, क्या करूं? तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने कहा था फकुल नद्र बियसाकल हजर, नाफरमान कौमें अपने लीडरों को जीने नहीं देती, जो मोहसिन होते हैं ना उन्हीं को सबसे ज्यादा अपने खिलाफ और अपने आराम में खलल डालने वाला और आपकी प्राइवेसी में पता नहीं क्या क्या करने वाला समझती हैं, यही इस कौम का हाल था। भाई देखो मूसा की वजह से अल्लाह ने फिरौन को मार दिया, ये एहसान भूल गए हो? तुम्हारे शैतानों को अल्लाह ने मारा है, क्या तुम्हें नहीं इस बात की कदर कोई कि मूसा ने तुम्हारे लिए कितनी तकलीफें सही? लेकिन इस कौम ने नाशुक्री का इजहार किया और अल्लाह सुबहान तआला ने इनकी इस नाशुक्री की सजा में इनको फिर पकड़ के मारा। फिर उसके बाद आप देखिए कि यहां जो लफ्ज है ना फकुल ना बी असाकल हजर, अल हजर आया है, अब ये बात पहले नहीं बताई तो अब नोट करें, अल किस चीज की अलामत होती है? ये तो सभी को आता है, मारफा, कॉमन नॉन नहीं, प्रॉपर नॉन। तो इससे पता चलता है कि किसी भी पत्थर पे नहीं, कोई खास पत्थर था। और कहते हैं कि ये लोग इसको ले लेके फिरते थे, पत्थर लेके चलते, जहां पानी की जरूरत पड़ती एक दफा मूसा सा मारते पानी निकलता, जितना पीना होता पीते, उसके बाद दोबारा सा मारते तो पानी खत्म हो जाता, ये किस्म का उनके लिए एक वाटर कूलर सा बन गया था। तो ये मारफा की सूरत में मखसूस पत्थर है और ये इसम जिन्स भी है। तो बहरहाल इसके बाद ये सारी बात हो गई, इससे क्या पता चला कि अल्लाह ताला नेमते देकर कहते हैं खाओ, यहाँ कुलू बशरबू क्या है, अमर हुक्म है, तो आप खाना खाएंगे ना, तो कहें अल्लाह जी मैं आपका हुक्म पूरा कर रही हूँ, पानी पियेंगे ना, कहने अल्लाह ताला मेरा नाम अपने फरमाबरदार बंदों में लिख दे क्योंकि मैं आपकी नेमत समझ के इसको पी रही हूँ। तो यहाँ से पता चला कि जिस तरह कोई माँ भी अपना खाना बनाकर बच्चे को खाने से नहीं रोकती बल्कि कहती कि खुलू अशरबू खाओ मेरे बच्चों, उतना ही माँ अक्सर खाना बनाती है जितना बच्चों ने, मियाँ ने, घर में जो भी लोग हैं उन्होंने खाना होता है। अल्लाह ने इस कायनात का रिस्क हमारे लिए फैलाया, ये पूरी कायनात एक बहुत बड़ा टेबल क्लॉथ है, हमें क्या कहा खाओ पियो, मना किससे किया, ला तासो फिल अर्थ, सरकशी ना बनाओ। जैसे माँ बच्चे को कहती हाथ धो के बैठो, अपने आगे से खाओ, भाई का नहीं खाना, ये छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस तो हम पसंद करते हैं कि माएँ ये पसंद करती हैं, کہا کہ تم اس کو کھا لو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے پینے سے خوش ہوتا ہے. بیلیو می، اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے سے، ہمارے پینے سے، ہمارے پہننے سے، ہمارے اوڑھنے سے، ہمارے خوش رہنے سے خوش ہوتا ہے. بالکل امیجن کریے اس بیوی کو کہ جس کا مرد کما کر لائے، اس کو گھر میں چیزیں دے، اب تھوڑی بھی دے تو بیوی کے آپ جتنا اچھا تو کوئی لاتا ہی نہیں ہے، آپ جتنا اچھا تو کوئی دے نہیں سکتا، آپ تو میرے اتنے ٹیک کیئرر ہیں. تو وہ تھوڑا بھی دے اور بیوی زیادہ خوش رہے تو مرد کہے گا کتنی شکر گزار بندی ہے. اور اگر مرد گھر میں آئے تو دوپٹہ باندھا ہوا، 10 چیزیں وہ لے آیا، ایک نہیں لایا، کہتی وہ نہیں لایا، وہ اکثر آپ بھول ہی جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے ہنستا بولتا بندہ، شکر گزار، اسمائلی، خوش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا موسٹ اسمائلی پرسن تھے، آپ سب سے خوش تھے. تو خوش رہنا انسان کا حق ہے. یہ نعمتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ نے رکھا، پیچھے آپ پڑھیں گے اور آگے بھی آئے گا، کلو من طیبات ما رزقناکم، کرنا کہ طیب کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی نعمتوں کو پا کر کھانے کے بعد فساد کیسے کر جاتا ہے؟ تو نمبر ایک، تکبر، اپنے اندر بڑائی آ جاتی ہے. جو ہم کھاتے ہیں وہ کون کھا سکتا، ہم تو دے. اور آج کل اس کی اور مصیبت بن گئی، تصویریں ڈال ڈال کے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، پھر کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے اگلا بندہ سو کے بھوکا بیٹھا ہو اور آپ اس کو گرم گرم کھانے کی خوشبویں بھیج رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. بن سوائل اٹس اوکے، کبھی ہو گئی بات، کوئی بڑی انیوژل بات ہے. یہ کہہ دیں دعا کر رہی ہوں آپ بھی میرے ساتھ کھا لیں، اچھا اچھی چیز بنائی تھی، آپ کا خیال ہو گیا، اچھا میرے بھائی میرے ساتھ ہوتے تو میں ان کو بھی کھلاتی، اٹس اوکے، کوئی حرام نہیں ہے. بٹ ہر وقت شو مارنے والا اسٹائل، یہ تو جھجھور بننی ہے. اور اب تو میں حیران ہوتی ہوں، بچوں کی تصویریں، بڑوں کی تصویریں، کھانوں کی تصویریں، کہیں بھی جاتے ہیں نا، سچ بتاؤں، آپ سائٹ سینگ پہ جائیں، یعنی آپ میں سے کوئی اگر ٹرپ پہ جاتا ہے جو لے کے جائیں، اور آپ وہاں دیکھنے کی بجائے کیمرے سے تصویریں کھینچتے رہے، بھائی جو چیز آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے آپ نے بھی اس وقت کیمرے سے ہی دیکھی، تو پھر آپ ادھر آئے کیوں؟ وہ اچھے نہیں رہ گئے جو بغیر آئے گھر میں آپ کی تصویریں دیکھ لیں گے. کھلی آنکھ سے دیکھنا اور کیمرے سے دیکھنا بہت فرق ہے. تو انسان کو تکبر میں نہیں آنا چاہیے. دوسرا فساد پھیلانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کہ انسان ان نعمتوں کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھے. یہ سیکنڈ ہے. سوال دہرا دیتی ہوں، رزق ملنے کے بعد انسان فساد کرنے والا کیسے بنتا ہے؟ تو نمبر ایک، دوسروں سے خود کو بڑا سمجھنا، تکبر کا شکار ہونا. پھر دوسری بات ہے اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھنا. تیسرا فساد کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کہ رزق ملنے پر انسان مال کو اپنا حق سمجھے کہ یہ میرا حق ہے. پھر اگلا، اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں، بیکاز اٹس مائی منی، آئی کین یوز اٹ. کسی کو کیا حق ہے، اللہ کو کیا حق ہے، امی ابو کو کیا حق ہے، شوہر کو کیا حق ہے، نہیں، اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی سمجھنا. پھر اگلا اس کا پانچواں نقطہ کیا ہے، کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع آئے وہاں بخل کرے، یہ بھی فساد ہے. اور اگلا چھٹا، جہاں خرچ کرنے سے واہ واہ ہوئی، لوگوں میں بڑائی ہوئی، تو وہاں خوب خرچ کرے، یہ سب کچھ فساد ہے. اگلا سوال لکھیے، رزق حاصل کرنے کے بعد پھر فسادی بننے سے کیسے بچیں؟ ہاؤ وی کین سیو آور سیلف ٹو بی فسادی. تو نمبر ایک، رزق کو اللہ کی عطا سمجھے، شکر ادا کرے، رزق پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کر کے صدقہ دے، اور رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور اس کے بعد پھر اس کو خرچ کریں. اب اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو، مجھے بھی الحمدللہ. اب آپ دیکھیے کہ سبق کا آدھا حصہ پورا ہوا. نعمتیں انسان کا حق تو نہیں ہے، اللہ نے اپنی عطا سے دی ہیں، اس کو انسان کو کھانا چاہیے. اب چلتے ہیں اگلی آیت پہ، کیونکہ دو ہی آیتیں تو ایک آیت ہو گئی. اب دوسری میں سے آپ کو بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر اس آیت کی واپس سمجھ آئیں گی. اگلی آیت پہ نظریں جمائیے گا. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، کس نے کہا، تم کون ہے ادھر؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بنی اسرائیل. یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن کہاں اتر رہا تھا؟ مدینہ میں. تو مدینہ میں کون تھے؟ یہود مدینہ. تو ان کو ان کی جگہ پہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ وہ اپنے آبا و اجداد کے ان کاموں کو یاد رکھتے تھے. بچے بچے کو انہوں نے اپنی کہانیاں سنائی ہوئی تھی. اور یاد رکھیے کہ یہود جو ہے نا، وہ اپنے بچوں کو اپنی ہسٹری بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں. خیر ہو گیا. کیا کہا؟ یا موسیٰ، لکھیے ذرا، بد تہذیب قوم نبی کا نام لیتی ہے. قرآن میں دو تین طرح جب یا موسیٰ آتا ہے، ایک تو اللہ نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا آپ کے ہاتھ میں، لیکن جب قوم کہنے لگے یا موسیٰ، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے ابو کا نام لیتے ہیں یا यानी आप देखना किसी के बाप का नाम रज़ाक है और जाके बेटी कहती या रज़ाक, हत्ता कि शौहर का नाम आप देखिए कि किसी के शौहर का नाम मिसाल अरशद है तो या अरशद, अच्छा नहीं लगता, ओ अरशद इधर आओ और रज़ाक इधर आओ। तो जब कौम अपने नबी के बारे में नाम लेने लगे तो ये बद तहजीबी है कि आज हम मुसलमानों में तो नहीं कोई या मोहम्मद कहता। ये बात नोट कीजिए, लन नस्बिर अला तामिन, ये लन क्या है पीछे कभी सुना, फ़ाइलम तफलू वलन तफलू, हरफे नहीं है। लिखिए देखिए दो लफ्ज होते हैं, हरफे नहीं और हरफे नफी। हरफे नफी है ये बेसिकली, हम नहीं कर सकते शिद्दत के साथ है, या ये भी आ सकता था ला नस्बिरू, लेकिन यहाँ लन नस्बिरू आ गया, ये लफ्ज सबर आ गया। नस्बिरू के लफ्ज में क्या छुपा हुआ है, सबर। सबर किसको कहते हैं, बचपन से आप और मैं सबर का लफ्ज सुनते आए जानते आए, लेकिन सबर के इतने मुख्तलिफ रंग है, जब कुरान खोलें आपको डिफरेंट एंगल समझ आएंगे। तो लिखिएगा सबर कहते हैं रुकने को, अरबी में लोग कहते हैं सबर दाबा, भूखे जानवर को चारे के बगैर बांध देना। इमेजिनेशन में लाएं, जानवर भूखा है और आपने उसको बांध दिया और उसके सामने खाना जो है वो दूर है, वो खा नहीं सकता, देख सकता है, क्या होगा उसके अंदर, जोश उठेगा, भूख उसकी अंतड़ियों को काटेगी लेकिन वो वहां खा नहीं सकता। तो सबर, आपके अंदर गुस्सा है किसी पे, इतना गुस्सा आप पे जो ताप खा रहे हैं, आपका अंदर उबल रहा है, बट नस्बिर, सबर करेंगे। दुख है, ऐसी अनयूजुअल बात आपके ऊपर डल गई कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, क्या करेंगे, सबर करेंगे। तो सबर में रोकना, जब कभी मल्लाह अकेला होता है ना कश्ती में, हर वक्त तो सवारी नहीं मिलती ना, तो कश्ती का बैलेंस कैसे रखता है, इमेजिन करें ना कश्ती है तो अब वो एक तरफ बैठता है हमेशा, तो अब दूसरी तरफ सवारी बैठ जाएगी तो कश्ती बैलेंस होगी। तो जब कश्ती में कोई सवार नहीं होता, मल्लाह अकेला है, शाम को घर जा रहा है, तो कश्ती के अंदर उन्होंने एक आधा पत्थर अपने पास रखा होता है, जिधर खुद बैठे ना उससे ऑपोजिट पे वो पत्थर रखता है, उस पत्थर रखने को भी सब्र कहते हैं। तो सब्र क्या है, दिल पे पत्थर रखना, अपने आप को रोक लेना, बांध लेना। सबर ही शुक्र में बदलता है और ये सी सॉ की तरह आगे से आगे जाता है। यहां कौन सा सबर है, लन नस्बिरा, हम कौन सा सबर नहीं करेंगे, जरा समझिए तो सही, बनी इसराइल पे क्या आफत टूटी जिस पे वो सबर करें, बता सकते हैं आप, सबर यहां किस मानों में आ रहा है, टेस्ट, लज्जतों के हरीस, जायकों के हरीस। लन नस्बिरा अला तामिन वाहिद, हम नहीं सबर कर सकते ऊपर एक खाने के। ये ताम का लफ्ज क्या है, तोम, तोए ऐन मीम, अच्छा तोए ऐन मीम लिखिए तो ताम खाना, और अगर आप तोए मीम ऐन कर दें तो एक ही बात है ना, तो तमा क्या हो गया, लालच। तो यही वर्क आपको समझा रही थी कि रूट वर्ड जो होता है उसकी तरतीब नहीं बदल सकते। शुक्र शीन काफ रा, तो आप कहते नहीं मेरा हले शीन रा काफ था तो क्या बन गया, शिर्क। तो तरतीब नहीं बदलनी। तो यहां क्या समझ आ गया, तामिन खाना, वाहिदिन एक। सवाल पता होता है कि इधर तामिन वाहिद से क्या मुराद है जी, कोई आप में से बताना चाहे, एक खाने का इनकार कर रहे हैं, ये कौन सा खाना था, तो वो एक था कि दो, तो फिर वो तामिन वाहिद क्यों कह रहे हैं, एक तरह का खाना, शाबाश। आप देखिए कि यहाँ इंसान की एक वीकनेस बताई गई है कि वो हर दिन एक तरह का खाना नहीं खा सकता। आप नोट कीजिए ना कि अल्लाह ताला ने उनको क्या दिया, मन, और बताया था आपको कि मन्ना नाम की कोई चीज मिस्र में वो खाते भी थे। अब मन आ गया और उस मन को मन कहने के भी कई वजूहात है जो मैंने पीछे नहीं आपको बताई थी, यहाँ थोड़ी सी बात करूंगी। आप देखिए कि मन अरबी जुबान में एहसान को कहते हैं, बोझ। ये जो आप कहते हैं ना एक मन गंदुम, दो मन गंदुम, तो वो भी यही है, वजन, बोझ, बोझल होता है ना मन, 40 किलो का मन बहुत बड़ी चीज है। अरबी जुबान में मन कहते हैं क्या, कौन, हु इज, मन जल्लजी युकरिदुल्लाहु कर्दन हसना। तो बाज कहते हैं कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम वो मन देखा तो इन्होंने पूछा, मन व्हाट इज दिस, हु इज दिस, व्हाट इज दिस, तो मन, इसलिए इसको मन कहते हैं। बाज कहते हैं कि अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान था कि सहराओं में भूखे रहने की बजाय अल्लाह ने आसमान से इतना प्योर खाना दे दिया, तो मन से मुराद ये कि अल्लाह का एहसान है। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ मनो सलवा को इन्होंने एक खाना कहा, तो असल में बात क्या है कि ये एक चीज रोज नहीं खा सकते थे। आप देखिए ना जरा अपने ऊपर लेकर सोचे, आपको क्या चीज पसंद है, कोई आप में से बताए, दो लफ्ज बोलती है ना, जैसे मन सलवा ना, चले इसको दाल चावल कहते हैं, आपको दाल चावल बड़े पसंद है। सुबह आप उठे, मामा से नाश्ता बनाए, क्या है नाश्ते में मामा? दाल चावल। ओके गुड, खाएंगे। दोपहर को पढ़ के यहाँ से गए, मामा अब क्या खाने में? चावल दाल। अब वो दाल को चावल नहीं, चावल को दाल कर दे, फिर कहेंगे दाल चावल। ओके ठीक है, इस फाइन। शाम को क्या? दाल चावल की खिचड़ी। उसी दाल को चावलों में डाल के माँ ने खिचड़ी बनाई। कितने दिन आपको दाल चावल पसंद आएंगे? ये तो दाल चावल की बात है, हम तो एक होटल से रोज खाना नहीं खा सकते। तो बस लोग यहाँ बहुत पिटी फील करते हैं, हाय बेचारों ने क्या कह दिया था। एक ही ये कहा था ना कि हम रोज का एक खाना नहीं खा सकते, लेकिन असल में यहाँ इशारा किस बात का है? बेसब्री पे। अभी इस पूरी आयत को करें, फिर इसमें हम वापस आएंगे। कहा हम नहीं रोज खा सकते एक तरह का खाना, वी आर फेड अप ऑफ दैट, हम रोज एक ही तरह की चीजें नहीं खा सकते। अच्छा, जो माए रोज ही खाने में 10 तरह की चीजें डाल दें तो बच्चे क्या कहेंगे? हम रोज 10 तरह की चीजें नहीं खा सकते, नहीं खा सकते ना रोज की चीजें। तो क्या पता चला आपको कि यहां अल्लाह सुबहाना ताला ने उनकी सोच को कि हम यकसानियत से थक गए, उसका इशारा किया। चलिए आगे देखते, मांगते क्या है। अच्छा, मन क्या था? स्वीडिश डिजर्ट, या आप कह लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट। और सलवा क्या था? बर्ड्स। और आपको पता है कि परिंदों का गोश्त सबसे महंगा होता है। सलवा उनके पास आ जाते थे, उनको जिबा करते थे, काट के गोश्त बना के सालन बना लेते होंगे। मन वो जो एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट था, उसकी रोटी बना लेते होंगे। लेकिन उन्होंने अब क्या मांगा? कहने लगे फदूलना रब्बक, या फिर एक नुक्ता है, पुकारो तुम अपने रब को। भाई तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों नहीं पुकारते? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आज हम लोग भी नहीं पुकारते अल्लाह को। बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह हमारी नहीं सुनता। तो यहाँ फिर इनकी ये इस जहालत का जिक्र है कि नबी से ही दुआ भी कराएंगे। युखरिज लना मिम्मा तुम भी तो, वो निकाले हमारे लिए। ये मिम्मा लफ्ज क्या है? मिन और मा, तो ये मिन की जरूरत तो थी। ये आयत ऐसे भी हो सकती थी युखरिज लना मिनल अर्दी, या मिन मा तुम भी तो अर्द भी हो सकता था। मिन और मा में मिन तस्गीर है। मा अरबी में जैसे बा के बहुत मानी है ना, माँ के भी बहुत है। या मुराद है कुछ तो निकाले, क्योंकि देखिए पीछे क्या था, अल्लाह ताला ने कहां से रिस्क उनको दिया था? पिछले आयत को देख लीजिए ना, अनजलना मिनस समा, अल्लाह ने आसमानी रिस्क दिया। ये चाह रहे थे जमीन से रिस्क मांगना। मिम्मा तुम भी तुल, तुम भी तु का लफ्ज क्या है उर्दू में? मिले नबता, नबतात का लफ्ज सुना? नबातात किसको कहते हैं? जड़ी बूटियां, ग्रीनरी, जो भी अल्लाह ताला की चीजें हैं हमारे पास। तो तुम भी तो मुराद के कि जमीन से उगे, अल अर्दु जमीन में से, मिन बकलिहा। अब देखिए जरा, ऐसे लग रहा है किसी होटल में बैठे और मेन्यू कार्ड हाथ में, और जरा इमेजिन तो कीजिए कि नबी है सामने। कितना डिसरिस्पेक्ट अंदाज है कि नबी को क्या कह रहे हैं, ओके टेक माई ऑर्डर। अल्लाह क्या दे? मिन बकलीहा, बकल दे उसका। बकल किसको कहते हैं? ये लफ्ज आपके लिए बिल्कुल नया है यहाँ। अमूमन तर्जमे में तो हम साग कहते हैं ना, लेकिन बकल कहते हैं वो सब्जी जिसका सबज डंठल हो, जैसे पालक, साग, लेटस, और कितने किस्म के ग्रीन पत्ते हैं, यानी हर एक में वो चीज जो के हम सैलड के तौर पे मोस्टली खाते हैं। यानी वो अब सैलड मांग रहे हैं कि हमें तो भाई सैलड टाइप की कोई चीज चाहिए, मतलब सब्ज तरकारियां। इसका वाहिद क्या है बकल का? ये वाहिद जमा जरूर लिखा करें, बाद में आपको फायदा होगा इसका। बकलतुन। अरबी जुबान में ग्रोसरी स्टोर को क्या कहते हैं? आप में से किसी को सऊदी अरब रहने का इत्तेफाक हुआ? अब जाते हैं हज उमरे पे तो क्या कहते हैं, कहाँ जा रही हो? वाकई नहीं पता। बकाला। बकाला वही वही बात है जहां से सब्जियां मिलती हैं, ग्रोसरी, डे टू डे यूज की चीजें। तो बकला तो उनकी जमा है, और बकल के फिर आगे जमा होती है बकूल। फिर बोलती हूँ, बकला तुन वाहिद, उसकी जमा बकल, और बकल की जमा बकूल। चलिए ये भी हो गया, यानी ग्रीन सब्जियां, उन्होंने सैलड मांग लिया। नंबर दो, वकिस्सा इहा। किस्सा का लफ्ज है ना, किस्सा अतुन की जमा है। किस्सा लफ्ज, किस्सा तुन, यानी आगे गोलता डाल देंगे तो वाहिद हो जाएगा। ककड़ी, ककड़ियां, आप इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्यूकम्बर, खीरा, इसकी बात हो गई। वफूमीहा, फूम जमा है फूमतुन की, गंदुम, गेहूं, और बाकी रोटी बनाए जाने वाले गल्ले भी इसमें शामिल हैं। मुराद इससे अनाज है, ठीक है, फूम। अच्छा इसको भी साउंड से भी याद रखना सिखाती हूँ इंशाल्लाह। पहले अगले पे जाइए, अदसिहा। अदस किसको कहते हैं? मसूर की दाल को। हर दाल आती है लेकिन मसूर। आप देखिए मसूर की दाल को आप अपने हाथ में रखें तो वो देखने में कैसी लगती है? अदसा। अदसा किसको कहते हैं? लेंस। ये पता चला कि लेंस मुसलमानों ने ईजाद किया था और उसका नाम अदसा रखा था। तो लेंटल या मसूर या अदसा ये सब एक ही चीज है, यानी दाल भी मांग ली। और क्या मांगते हैं? बसलिहा। बसल प्याज को कहते हैं। वाहिद है बसलत उनकी। अच्छा ये सारी चीजें खाते थे वहां, यहां नहीं मिली ना, तो अब मांग क्या रहे हैं आप देख लीजिए। चटपटी चीजें, या तो हलीम का सामान है या सैलड का सामान है, यानी उनको ये सब्जियां चाहिए थी। अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम जो लेना चाहते हो तुम्हारी खुशी। काला फरमाया अल्लाह सुब्हान ताला ने, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदल में लेते हो? अतस्तब्दिलून को मिलती भी चीज है इसमें भी, तब्दीली बदल है ना, तो उससे पहले भी अलिफ सीन ता है। क्या तुम तब्दीली तलब करते हो? ये मुराद है, ये वही रूल है जो अलिफ सीन ता वाला है। बदल से पहले अलिफ सीन ता लग गया, तो क्या तुम बदल देते हो अल्लाह जी उस चीज को हुआ जो अदना। अदना किसको कहते हैं भाई? इसके दो मानी है, लिखिएगा। दाल नून वाओ दनूब, इससे मिलता हुआ कोई लफ्ज लाएंगे? दुनिया। तो अदना कहते हैं करीब की चीज को, आखरत का ऑपोजिट है, दूर की है ना आखरत। और अदना कहते हैं हकीर चीज को, डिवेल्यूएशन। तो कहा क्या तुम कम दर्जे की चीज तलब करते हो, उसके बदले हुआ जो अदना, कमतर थी बिल्लाजी उसके बदले हुआ खैर, जो बेहतर है। यहां देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला मनो सलवा को आला और जो चीजें उन्होंने तलब की उसको अदना समझते हैं। तो क्या इससे ये बात समझ आई है कि सब्जियां बड़ी अदना होती हैं और बच्चों को तो सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और खिलानी भी नहीं चाहिए, पक जाए तो उस दिन फिर पिज्जा मंगाना चाहिए उनके लिए, और अम्मा अब्बा वो सब्जी गोश्त रोटी खाएं 2-4 दिन तक, के बच्चों ने तो खानी नहीं। आज बहुत सारे घरों का क्या ये हाल नहीं हो गया? अक्सर मारूफ बात है बच्चे सब्जी नहीं खाते, कितने लोग मानते हैं? तो फिर आप खुश हों कि कितने अच्छे बच्चे हैं। वो तो देखो ना बनी इसराइली कितने खराब थे कि उन्होंने सब्जियां मांगी, हम नहीं खाएंगे। नहीं देखिए ये जितनी सब्जियां ना, इसमें सिर्फ एक सब्जी प्याज। आप कहते हैं कि सहाबा ने सबसे पहले जिंदगी में प्याज कब देखा था? खैबर फतह हुआ तब। अरब की ये चीज नहीं थी, खैबर काफी दूर जगह है जहां यहूद थे, तो वो जमीने जब फतह हुई तो सहाबा खुशी खुशी प्याज लेकर आए। अल्लाह के नबी प्याज प्याज, तो आपने कहा कि मैं इसको नहीं खाता, तो सहाबा ने कहा ये हराम है। कहा हराम तो नहीं है, बट वो नाजी मल्ला तो नाजी, मैं उससे बातें करता हूँ जिससे तुम नहीं करते। यानी मुराद था कि मेरे पास जिब्राइल आते हैं, मैं अल्लाह से बात करता हूँ तो मेरे मुंह से बू ना आए। पसंद नहीं किया आपने, कहा कच्चा प्याज और लहसुन खाने वाले हमारी मस्जिद में ना आए, क्योंकि बिल्कुल करीब साफ जुड़ी होती है ना। अब एक कुछ पढ़ रहे थोड़ा और नमाज में थोड़ा ऊंची पढ़ना होता है तो दूसरे को मुंह की बास ना आए। इतने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हाइजीन का और तहारत का ख्याल रखते थे। तो इन सब्जियों में तो कोई बुराई नहीं है। सवाल पैदा होता है फिर अल्लाह ताला ने एक कौम को ये क्यों कह दिया कि तुमने काला चीज को बदल के अदना खरीद ली? एक तो इसमें लेक्चर मुझे याद आ रहा है, बड़ा ओल्ड लेक्चर है और बड़ा स्ट्रॉन्ग लेक्चर है, ये भी बताऊं आपको कि आला के बदले अदना के तलबगार। वेबसाइट पे जो नूरुल कुरान पे दावा सीडी थी उसमें डाला हुआ था, अब मुझे नहीं पता है कि नहीं, लेकिन वो इन्हीं आयतों पे। जायकों के हरीस भी एक सीडी का नाम था, वो भी इसी टॉपिक पे थी। क्या पता चला कि उन्होंने आला के बदले अदना क्यों मांगी? सवाल पैदा होता है लिखिए अपने पास कि मनोसलवा आला क्यों था इन दुनिया की चीजों के बदले? तो नंबर एक लिखिए, आसमान से आता था, आसमान प्योर है, जबकि जमीन में मट्टी भी आलाइशें भी हैं, गंदगी भी हो सकती है। दूसरी बात, बगैर मेहनत के मिल रहा था, जमीन से लेने के लिए तो उसको फाड़ना पड़ता है, मट्टी से तो मांग ली चीजें, पर ये भूल गए कि अब मेहनत भी करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट थिंग देखिए कि न्यूट्रियस था, प्योर था ना, गलने सड़ने का डर नहीं था, रोज फ्रेश उतरता। बाज़ लोगों ने कहा कि उन्होंने क्या किया था कि उसको स्टोर करना शुरू कर दिया था, और अगर उस वक्त फ्रीजर होते हैं तो उनके फ्रीजर मन और सलवा से भरे होने थे, जैसे हमारे फ्रीजर गोश्त और अला बला शलाली बात। बाज़ लोग कहते हैं फ्रीजर से नहीं मिलना, जाओ ग्रोसरी स्टोर से फिर ले आओ, बाज लोगों के फ्रीजर इतने भरे होते हैं कि वल्लाह ही वक्त पे उनको मिलता ही कुछ नहीं, पत्थर के पत्थर बन जाती हैं चीजें। या फिर कुछ बैठ के उसकी सारा दिन पूजा करते हैं, जब बनाते हैं तो पैकेट लिखते हैं ये सब्जी है दाल, फिर उसको स्टैक करते हैं ये सब्जियों का खाना है ये गोश्त का ये वो है, तो दिल लगाते रहे जितना भी लगाते रहे। वो किसी ने एक तस्वीर भेजी हुई थी, बकरा है और वो माइक पे कह रहा है मोमिनो फ्रीजर में बड़ी ठंड है, तो वो जिंदा डाला होगा तभी उसको ठंड लग रही है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बिला जरूरत चीजों को स्टोर करना पसंदीदा नहीं है। फ्रेश फूड खाइए, प्योर खाइए, और मिर्चें डालना और मसाले डालना और भूनना और पहले 2 दिन उसको सिरका लगा के छोड़ देना, फिर दही में नमक मिर्च लगा के उसको खूब अजाब देना, फिर गड़गड़ाते घी में उसमें प्याज जला के उसको गोश्त को डालना, वो बकरे की जहन्नम तो यही हो गई। अब उसके लिए तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं बकरे को सजा देने की। अच्छा, आपने कभी अरबों का खाना खाया? मीट, मैं मीट की बात कर रही हूँ, बॉइल्ड मीट होता है, स्टीम्ड या बॉइल्ड। आप उनके कभी पुलाव या वरुस बुखारी या जो वो सब्जी बनाते हैं, आप खा के देखिए, उसमें से प्योर टेस्ट आएगा आपको यखनी का। हमारे खानों में टेस्ट किसका होता है? मसालों का और भूनने का। कहते अभी भूना नहीं, यानी होता है कि अभी इसकी सजा माफ नहीं, अभी इसको और पानी डाल डाल के भूनो, फिर मसाला जला जला के, फिर जब वो घर में पूरे धुआं हो जाता है फिर कहते हैं कि अब इसको हम साफ कैसे करें। तो अल्लाह ताला ने आला और अदना की बात समझी कि सब्जी दाल बुरी चीज नहीं थी, बट अल्लाह ताला ने उनको, अब जो बात कहने लगी ना, ये पूरे सबक का खुलासा है, लेस टाइम टेकन थिंग्स नहीं थी। अल्लाह ताला ने इनको एक बहुत बड़ा मकसद दिया था, तुम दुनिया में मेरे दीन को फैलाओ, मैं तुम्हारी रोजी रोटी का इंतजाम करता हूं। कल अल्लाह ने उनको ये दिया कि आज हमें नहीं दिया। कई लोग कहते हैं हाय कभी हमें भी मनो सलवा मिल जाए ना, तो फिर तो क्या ये मन सलवा नहीं है? ये रेडीमेड फूड है, वो एक आजकल स्लाइड बहुत चल रही है इधर व्हाट्सएप पे भी, कि रात भर यही सोचता रहा कि मकसद हयात क्या था और खो किन कामों में गया। आज उम्मत मुस्लिमा का भी यही हाल है, लज्जतों की तलाश में चल पड़े, ऐश परस्त हो गए, बेहिसी हो गई। अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि तुम मेरे काम करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा, इन्होंने खानों को पसंद किया। यहां खाना या सब्जी या बकल या फोम या आदस या बसल अपनी जगह पे बुरे नहीं है, बट इनके अंदर खोकर टेस्ट कॉन्शियस हो जाना ये बुरा। आज कितने ही मुसलमान हैं, और मैं अपने आप को भी इसी में डाल लूं, तो हम पाकिस्तानी सिस्टर्स में से कितनी सिस्टर्स हैं जिनकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ मकसद खाना पीना बन चुका है। इज इट ट्रू? हम खाने पीने में इतने खो गए कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम करेंगे क्या। तो लिहाजा यही बात करके फरमा दिया, काल आता सब दिलून अल्लजी अदना बिल्लजी व खैर। और ये आयत पढ़ के तो मुझे अपनी दुआओं को चेक करने का मौका मिलता है कि कहीं मैं भी तो ऐसी नहीं हूं। मिसाल है, आप अल्लाह से कोई दुआ मांग लेते हैं, अब जब आप कोई दुआ मांगते हैं तो फिर क्या होता है, वो दुआ क्या होती है? मिसाल है, अल्लाह ने आपको एक चीज दे दी, मिसाल है आपको अल्लाह ने ये कुरान दिया, आप कहते हैं कोई मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए ना जिसमें मैं 20-25 हज़ार करोन कमा सकूं, और मिल गई, इधर कोर्स शुरू करेंगे उधर वो मिल जाएगी, अब क्या होगा आपके लिए? आपने क्या किया? तस्तब्दिलून अल्लज़ी अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, बाज़ार हमें दिखता नहीं है। आप कहते हैं मुझे ये चाहिए, आप देखिए हर वो चीज़ जो आपको नमाज से दूर करती है ना, वो इस आयत पे फिट होती है, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी अदना बिल्लज़ी हुवा खैर और सो ऑन, जो भी इसके आगे चीज़ है। अल्लाह ताला कहते हैं चाहिए तो इहबितु मिस्रन, ये डांट है, इसको डांट कहते हैं, तौबीख, इहबितु उतर जाओ, गेट आउट, मिस्रन किसी शहर में। ये लफ्ज़ मिस्रन को जरा हाईलाइट कीजिएगा, देखिए क्या इससे मुराद इजिप्ट है? नहीं, अरबी जुबान में मिस्र का लफ्ज जो है ना, ओनली मिस्र के साथ, आप देखिए जैसे यहां जबर है ना तनवीन, जब तनवीन के साथ आता है ना एनी सिटी मुराद है, और अगर मिस्र पे जबर हो तनवीन के बगैर, हालांकि होती नहीं है अमूमन नकरा शक्ल में, तो अगर आम शक्ल हो ना मिस्र, तो एक किस्म का ये मारफाई है यानी इजिप्ट के मानों में। यहां मिस्र क्यों बोला? शहर के लिए अरबी में बहुत सारे लफ्ज हैं, बलद है, करिया है, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से इनसे कुछ और लफ्ज भी बुलवा सकते थे, तो मिस्र की बोला, एक तो इनको इजिप्ट याद दिलवाया कि याद करो वहां की गुलामी के दिन, देखो तुम वहां किस चीज में पड़े हुए थे और अल्लाह ने तुम्हें कहां से निकाल कर कहां रखा। मदीना का लफ्ज भी आता है इसी में, बलद, दियार, करिया, लेकिन मिस्र बोलकर दो बातें हैं। मैं इसको आज सुबह भी गौर कर रही थी कि आखिर इह बे तुम मिस्रन क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये वादी में क्यों खोते थे और मूसा ने फिर किस शहर में जाने की बात की है। डांट है कि जाओ फिर बैतुल मकदस में, यहाँ मिस्रन से बैतुल मकदस कैसे मुराद है, कि जाओ फिर जिहाद करो, इमालका कौम से लड़ो और शहर आबाद कर लो। अगर अल्लाह ने तुम्हें यहाँ मेहमान बनाकर खाना दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है, तो तुम इसको इस्तेमाल कर लो। फाइनल को मासाल तुम, तुम्हारे लिए वही कुछ है जो तुमने मांगा, यानी वट एवर यू वॉन्ट अल्लाह ताला हैज़ गिवन यू, अल्लाह ने तुम्हें वही दे दिया। क्या पता चला कि जो बंदा चीज़ मांगता है अल्लाह सुबहान ताला उसको दे देते हैं।